الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہے. اس آیت میں جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ہے، وہاں سب اس کے ساتھ وقت کی قید بھی لگا دی گئی ہے. دین اسلام نے وقت کی اہمیت کو بہت اچھے انداز سے واضح کیا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا، الوقت من ذهب وقيل ذهب، وقت سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے. بعض مشائخ نے فرمایا، الوقت سيف قاطع، وقت کاٹتی ہوئی تلوار. یہ وقت چل رہا ہے، اس کو انسان استعمال کر لے تو فائدہ اٹھائے گا، اور اگر استعمال نہ کرے تو ضائع کرنا چاہیے. یہ مثال اس کی سمجھیے کہ جیسے بہت بڑا پانی کا ریزروائر ہو اور اس کے آگے ایک پل بنا کر اس میں ہائیڈرالک پاور اسٹیشن لگا دیا گیا. اب جو پانی بھی گزر رہا ہے اس کے بجائے وہ بجلی بن رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس پاور اسٹیشن کو آف ہی کر دے تو پانی تو پھر بھی گزر رہا ہے. پانی گزر رہا ہے، پروڈکشن کچھ بھی نہیں. کوئی بندہ اگر مستقل اپنے پاور اسٹیشن کو آن رکھے تو جتنا پانی تھا اس کے ایکویلنٹ یونٹ اس نے بنا لی، اور کوئی اس کا سوئچ آن ہی نہ کرے تو اس نے اپنا سارا کا سارا پانی ضائع کر دیا. یہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اوقات کو نیک کام میں لگانے کی کوشش کرے تو یہ اس زندگی کے وقت کو قیمتی سے قیمتی کر بنا سکتا ہے، اور اگر غفلت برتے تو یہ اپنے وقت کو گنوا سکتا ہے. گرمی کا موسم تھا، اچانک بادل بن گئے اور موسم زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو ایک برف بیچنے والے کی برف بک نہیں رہی تھی، کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا. اب شربت پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھنڈا بھی موسم ہو گیا، لیکن برف والے کا تو پیسہ لگا ہوا تھا تو وہ کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا کہ مجھ سے برف خریدو خریدو. جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں خرید رہا تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا. تو ہماری زندگی بھی برف کے بلاک کی مانند ہے، ہر لمحے پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہو رہی ہے. عمر مثل برف کم، چپک چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ہر لمحے گھٹتی چلی جا رہی ہے زندگی. जो दिन आज हमारी जिंदगी में गुरूब हुआ ये लौट कर दोबारा कभी नहीं, नया दिन होगा, नया वक्त होगा। ये वक्त हम गुजार बैठे तो वक्त की कदर लाने की बड़ी जरूरत है। इसको चाहे तो आप सोना बना लें और चाहे तो इसे मिट्टी के भाव आप गुजार। जिस तरह कंजूस इंसान बहुत ही मोहतात होकर अपने माल को खर्च करता है, मोमिन इसी तरह बड़े मोहतात तरीके से अपने वक्त को खर्च करता है। वक्त को सर नहीं होने देता। चुनाचे हमारे बुजुर्गों ने तो वक्त की बहुत कदर की। यहां तक के एक बुजुर्ग थे, वो खुद खत उठाया करते थे। किसी ने उनसे कहा कि हजरत आप इसको पानी में मिला के मीठा मिलाएं और फिर खाएं तो इसका बड़ा मजा होगा। उन्होंने कहा भाई मैंने इसको पानी मिला के भी खा के देखा, खुश खा के भी देखा। जब मैंने कंपेरिजन किया तो पानी मिला के खाने में वक्त ज्यादा लगता है, खुश फांक लेने में वक्त कम लगता है। मैं पिछले 20 साल से खुश्क फांक के गुजारा कर रहा हूँ, जो वक्त बचता है उसमें 70 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेता हूँ। अब अंदाजा लगाइए कि वो अपने खाने के वक्त में से टाइम बचाकर क्योंकि अल्लाह का जिक्र करते। हमने कभी शायद सोचा ही हो कि खाना भी कोई ऐसा अमल है कि जिसमें थोड़ा वक्त लगाना चाहिए, वक्त को उसमें से भी बचाने की जरूरत है। एक बुजुर्ग थे जो फौत हुए, तो उनके जिंदगी के दिनों पर जितनी किताबें उन्होंने लिखी थी उनके टोटल पेजेस को जब डिवाइड किया तो 20 पेजेस पर डे की एवरेज आई। अब बताएं कि जो बंदा 20 पेजेस ऑफ न्यू बुक पर डे लिख सके उसने कितनी मशहूर जिंदगी गुजारी। हम तो 20 पेजेस पर डे पढ़ नहीं सकते, नई किताब लिखेंगे क्या? लिखना तो बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने कितनी मुश्किल जिंदगियां गुजारी, बहुत मशहूर जिंदगी गुजारी। हत्ता के तलब इल्म में हमारे मशायख ने ऐसे अजीब नमूने छोड़े हैं कि दुनिया आज तक उस पर हैरान है। तलब इल्म में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह खुसूसी शागिर्द थे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी बने। एक जगह दरस कुरान देते थे, दरस फिक्र देते थे। अब बहुत लोग उनकी महफिल में उनकी बातें सुनने आते। करीब एक आबादी थी चंद मील के फासले पर, उनके कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हजरत आप हम भी दर्द किया कीजिए। उनका भी देखो इतने मैं सबक यहाँ पढ़ाता हूँ, इतना मसरूफ रहता हूँ, तो मेरे पास तो इतना थोड़ा वक्त है कि मैं यहाँ से अगर इस बस्ती जाऊँ और वापस आऊँ तो वक्त गुजर जाए, तो वक्त कम है मैनेज में। उन लोगों ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि हजरत हम इस मशवरा देते हैं कि हम एक सवारी का इंतजाम करते हैं, जैसे ही आप दर्द से फारे हों उस सवारी के सवार होकर आप आ जाए करें तेजी से, और जैसे ही दर्द खत्म हो उससे वापस चले जाया करें, तो बचत हो जाएगी टाइम की। हजरत ने कबूल कर लिया। अब एक जगह भी दर्द होने लगा, जब सारे होते तो सवारी पे दूसरी जगह जाते फिर वापस आते, तो दो जगह दर्द का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह ताला की शान देखें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह एक दिन आए اور امام محمد رحمۃ اللہ ایسے کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے, فلاں کتاب پڑھنی ہے, کہیں آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس ٹائم فاری نہیں ہے, حضرت وہ آپ سے پڑھنی ہے. ٹائم کہاں سے لاؤں میرے پاس ٹائم, جب دو چار مرتبہ کہا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ حضرت فلاں شاہ سے مطلب کہنے لگے کہ حضرت جب آپ ایک جگہ درس دینے کے بعد سواری پہ سوار ہو کر دوسری جگہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ سارے ہوتے ہیں, آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے درس دیا کرنا, میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا آپ کا درس بھی سن کر. تاریخ انسانیت میں طلب علم کی اس سے بہترین مثال کوئی مل نہیں سکتی. اتنا مسلمان ایک وقت میں علم کا قدردان تھا کہ استاد کی سواری چل رہی ہوتی تھی اور یہ ساتھ ساتھ بھاگتا بھی تھا اور استاد سے علم بھی حاصل کیا. ان حضرات نے اپنے وقت کی قدر کی, وہ سمجھتے تھے کہ وقت اتنا اہم ہے. چنانچہ ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ علیہ رحمۃ اللہ کے والد ہیں, ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ گنا چوسے, گنے ہوتے ہیں سردیوں کے زمانے میں, تو خیال آیا یا دھوپ پہ بیٹھ کے گنا چوسیں گے. 17 سال اس کے بعد زندہ رہے, دھوپ پر بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت ہی نہیں. 17 سال میں گنا چوسنے کی فرصت ہے, اتنی مصروف زندگی ہو رہا ہے, کام 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 بس چھوڑا رہا. ایسے وقت میں زندگی کو مشہور گزارا ہے. دین اسلام میں ذرا توجہ فرمائیے گا, دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ شریعت میں جو دن کی عبادتیں ہیں ان کو سورج کے ساتھ نفی کیا, اور جو سالانہ تقاریب ہیں ان کو چاند کے ساتھ نفی کیا. یعنی دن کی عبادت کو سولر سسٹم کے ساتھ اور سالانہ تقریبات کو لونر سسٹم کے ساتھ, مثال کے طور پر جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہو گیا اور سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک رہا, سورج جب ڈھل گیا ظہر کا وقت, جب سایہ دو مثل ہو گیا تو عصر کا وقت, جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت, جب سورج غروب ہوئے اتنی دیر لگی کہ ستارے چھٹکنے لگے تو عشاء کا وقت. تو دن کی پانچوں نمازوں کو کس کے ساتھ نفی کیا گیا؟ سورج کو. لیکن جو سالانہ تقاریب ہوتی ہیں ان کو نفی کیا گیا چاند کے ساتھ. مثلا عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے, حج کرنا ہے, ایک تقریب ہے, ایک عمل ہے سالانہ, چاند کے ساتھ اس کا رشتہ. جب 9 تاریخ ہوگی عرفات سے آن جائیں گے, وقوف کے عرفات, چاند کے ساتھ اس کا تعلق. ربیع الاول کا مہینہ چاند کے ساتھ, محرم کا مہینہ چاند کے ساتھ, رمضان کا مہینہ چاند کے ساتھ, عید الفطر چاند کے ساتھ. تو آپ غور کیجئے سالانہ تقاریب جو ہماری زندگیوں میں ہیں نا, ان کا تعلق لیونر سسٹم کے ساتھ. اچھا یہ کیوں نہ کیا کہ اس کو بھی سولر سسٹم سے وابستہ کرنے سے؟ اس میں حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ لیونر سسٹم سولر سسٹم سے 10 دن چھوٹا ہے, تو ہر سال یہ 10 دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. چنانچہ ایک بندہ اگر گرمیوں میں روزہ رکھے اپنے بچپن میں تو 36 سال میں یہ مختلف ताल के हिस्सों में से रोटेट होके फिर वही गर्मे में आ जाए। तो इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को ये तकारीब साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाने का मौका मिला। अगर सोलर सिस्टम कर देते तो साल के जिस हिस्से में जो तकरीब जहां आती वो तो हमेशा वही होती। अब दुनिया में हर जगह तो दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की नहीं ना, कम ज्यादा भी है। तो कम ज्यादा में कई जगह 6 घंटे की रात, 18 घंटे का दिन। तो 18 घंटे के दिन वालों को रोजे अगर आ जाते उस मौसम में, तो वो तो फिर सोचते ना, या अल्लाह लोगों के लिए 6 घंटे के रोजे, हमारे लिए 18 घंटे के रोजे। कुछ साल पहले की बात है, इजाजत से मुल्क जाना हुआ, वहां सूरज शुरू होता था 9:30 बजे दिन के। सूरज शुरू होता है 9:30 बजे दिन के और मगरिब की नमाज होती है 3:30 बजे से पहले। अब दिन देखो कितना छोटा। अब उस मौसम में उनको रोजे रखने हो हमेशा सारी जिंदगी, तो उनके तो मजे हो गया था। अभी शहरी करके फारिग हुए, 7 अफ्तारी की तैयारियां शुरू। दिन भी छोटा था, इसमें नमाजें भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है, असर भी पढ़नी है, असर भी पढ़नी है, फिर मगरिब भी पढ़नी है। मगर क्या, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो अगर वो साल में कभी छोटे दिनों में रोजे रखेंगे तो फिर कंपनसेट होगा। ऐसा भी वक्त आएगा 18 घंटे भी रोजे रखने को, कभी सर्दियों में रखेंगे तो गर्मियों में भी रखेंगे, फिजा में रखेंगे तो बाहर में भी रखेंगे। तो साल के मुख्तलिफ औकात में तकारीब को मनाने का मौका मिलेगा। ये हुकूमत देखो दीन इस्लाम, चांद के साथ जो ताल्लुक है ना, इसमें बड़ी हिकमत है। हमारे यहाँ कई मुसलमान भाई बड़े तंग होते हैं, कहते हैं जी इसको शमस निज़ाम के साथ आप लोग क्यों नहीं मिला देते, ताकि हर साल तय हो कि ईद कब होगी, हज कब होगा, फलां कब होगी। अब उनको समझाया जाता है कि देखो दीन इस्लाम तो आलमी दीन है, क़यामत तक के लिए दीन है, हर दौर और हर जमाने का दीन है। तो दीन इस्लाम ने तकारीब में रियायत की कि ये रोटेट हों साल के मुख्तलिफ महीने में, और सारे दिन की नमाजों का वक्त सूरज के साथ नक्शी किया। क्यों? सूरज एक ऐसी चीज है कि दुनिया में इंसान जहां भी हो सूरज को आसानी से देख सकता है, वो समुद्र में हो तो भी देख सकता है, वो पहाड़ों पे हो तो भी देख सकता है, वो जंगलों में हो तो भी देख सकता है। तो सूरज से उसको नमाज के वक्त का अंदाजा लगाना जरा आसान होता है। मुझे शासन ने साथ सुनाया रमजान का चांद देखने के बारे में, सोमो जो रोया थे ही तो अक्सर उदय रोया थे कि तुम चांद देखो तो रोजा रखो और चांद देखो तो इफ्तार कर लो। तो चांद देखने पर हुक्म दिया। अब यहां हमारे जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके दो ग्रुप हैं। एक तो वो हैं जो बड़ा अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं कि हम साइंस पढ़े हैं और हम PhD की है और MSc की है और कंप्यूटर साइंस रखना। वो कहते हैं जी कि बस साइंटिफिक एज है, चांद का पहले से ही अंदाजा लगाते हैं कि ये कब नजर आ सकता है, तो पहले से ही अनाउंस कर देना चाहिए। चिनाची दारुल हिजरा एक मस्जिद है वर्जीनिया में, वहां शौबान के आखिरी जुमे में ऐलान कर दिया जाता है कि इस तारीख को पहला रोजा होगा, इस तारीख को ईद मनाई जाएगी। वो करते क्या है, वो करते ये हैं कि चांद के बारे में डेटा देखते हैं और जहां चांद नजर आने के चांसेस होते हैं वो उस दिन को पेपर के ऊपर डिसाइड करके ना डिसीजन ले लो। लॉजिक उनकी क्या है? उनकी लॉजिक ये है कि जी आज तो चांद के बारे में इतना डेटा अवेलेबल है कि आदमी को कोई लेकर पता चलता है कि ये नजर आ गया। अच्छा, उसमें थोड़ी सी एक ना बारीकी है, वो भी अब बात चल पड़ी तो खोल दें कि चांद जब 15-14 को होता है ना तो भरपूर चांद होता है, फिर 15 के बाद आहिस्ता आहिस्ता घटता 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 जो महीने के अख्ताम से ना ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, और एक दिन दरमियान में ऐसा आता है जब ये नजर ही नहीं आता। वो जब नजर ही नहीं आता ना तो उस वक्त ये बिल्कुल काला होता है, नजर ही नहीं आता। साइंसदानों ने उसका नाम रख दिया न्यू मून। तो गोया जब चांद नजर आ ही नहीं सकता, ये ओझल है, काला है, तो उसका नाम साइंसदानों ने क्या रखा? न्यू मून। अब हमारे मुसलमान भाई कई न्यू मून के लफ्ज से धोखा खा गए। भाई एक न्यू मून हमारा है जिसको देख के हम रमजान शरीफ का ऐलान करते हैं, और एक न्यू मून का लफ्ज साइंसदानों का है। साइंटिफिक टर्म और चीज है, मुसलमानों का नया चांद और चीज है। साइंसदान न्यू मून उसको कहते हैं कि जब वो बिल्कुल काला होता है नजर आने के चांसेस होते ही। हम न्यू मून कहते हैं क्रीसेंट को, हिलाल को, जब हल्का सा हिलाल नजर आता है हम उसको न्यू मून कहते हैं। उनके न्यू मून की डेफिनेशन में हमारे न्यू मून की डेफिनेशन में फर्क है। अब होता क्या है कि जब चांद नजर नहीं आता आखिरी दिन, तो उस वक्त इसको कहते हैं बर्थ ऑफ न्यू मून। यानी जब काला हो गया तो क्या हो गया? बर्थ ऑफ न्यू मून शुरू हो गई। वो बर्थ ऑफ न्यू मून अगर हो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मगरिब से पहले पहले, तो चांद नजर आना मुमकिन ही नहीं होगा। और अगर 20 घंटे 22 घंटे 23 घंटे, तो नजर आना तकरीबन यकीनी होगा। 6-8 घंटे अगर शुरू के हो तो मुमकिन ही नहीं कि देख सके। और अगर 18 घंटे से ऊपर हो तो 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि यकीनन देखेंगे। अब ये जो दरमियान का दौर है ना, ये बड़ा क्रिटिकल दौर है कि कई मरतबा बर्थ ऑफ न्यू मून होती है 14 घंटे। अब 14 घंटे में नजर आने के इम्कान 50-50 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो भाई दीन इस्लाम तो क्यामत तक के लिए दीन है ना। अगर हमने चांद के डेटे पर डिसीजन लेना है तो हमें तो फिर हमेशा एक उसूल को अपनाना पड़ेगा ना। हम इनसे ये पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई जब तो बर्थ ऑफ न्यू मून है 8 घंटे तक साल जहरे के नजर नहीं आता, अगले दिन ईद होगी, कुछ अगले दिन चांद नजर आएगा, फिर अगले दिन ईद होगी। और अगर 18 घंटे से ऊपर हो चुकी तो यकीन ही है कि कल को ईद होगी, मगर दरमियान में क्या करेंगे जब 12-13 घंटे का डिफरेंस फर्क हो? कहते हैं जी कि उस वक्त यकीन से नहीं कह सकते। हम कहते हैं सच्ची बात जी मेरे सामने नहीं पसंद की, तो बेहतर है कि ये तो कोई क्राइटेरिया ना होगा कि हमेशा इसको इसके ऊपर डिसीजन दिया जा सके। वो कहते हैं जी नहीं, बस डिसीजन इसके ऊपर लो। लॉजिक क्या? लॉजिक उनकी ये है, तवज्जो सुने, लॉजिक ये है कि जी आज दुनिया चांद पे पहुंच चुकी और इन मुल्लाओं को चांद नजर ही नहीं आता। ये लॉजिक कि दुनिया चांद पे कदम रख चुकी और मुल्लाओं को चांद नजर ही नहीं आता। हम कहते हैं देखो भाई, उसूल हमेशा एक होता है। अगर तो चांद के डेटा से उसको डिसाइड करना है तो फिर डेटा हमेशा क्लियर कट होना चाहिए। अगर उसमें कहीं दरमियान में शक के इम्कान आते हैं तो शरीयत शक वाली चीज को बेस नहीं बना सकती। नबी इस्लाम ने फरमा दिया सुम उधर हो जाते ही वास्ते उधर हो जाते, चांद आंख से देखो तो तुम रोजा शुरू कर दो, फिर आंख से देखो तो तुम ईद मना लो, बहुत ही बात है। अब उनको ये बात कई दफा हमारी जरा मुश्किल नजर आती है, बोझ लगता है। चुनाते होता क्या है कि जब भी ऐसा मौका आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ दारुल एहसान में भी, या जब कभी ऐसे मौके पर यहाँ होता है, पहले भी यही करते रहे कि उस दिन हम दूसरी जगहों से रابطہ करते हैं, पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ चांद नजर आने के चांद से लक्ष्य होते हैं, फिर वहाँ लोगों को हमने कई दफा यहाँ खुद भेजा तो फिर जाए वहाँ किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते ना, जरा देखे चांद नजर आता है या नहीं आता, हमें भी शाम की सुन्नत पर अमल हो सके। चुनाचे ईद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर मिनट में 3 से 4 कॉलें आ रही होती है, हर मिनट में इधर से फोन कर रहा है जी कब ईद होगी, इधर से फोन कर रहा है कब ईद होगी, हफ्ता से क्या ह्यूस्टन तो क्या शिकागो तो क्या कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, वहां से लोग फोन करके पूछते हैं दारुल एहसान में कि ईद कब होगी। अल्लाह की शान, लोग अपनी इबादत को जाया नहीं करना चाहते, तसल्ली उनकी इधर ही होती है तो वो पूछते हैं। अच्छा एक दफा में फिक्र हुई कि भाई जब चांद नजर आने के कुछ साइंटिफिक तरीके हों तो हम पता तो करें। हमें पता चला कि वाशिंगटन में स्पेस रेडियो में, हम कई दफा गए हैं वहाँ उसको देखने के लिए, साइंस एक अजीब जो है ना वो दुनिया है तो उसको देखना चाहिए, हर आने वाले को देखना चाहिए, वहां चांद गाड़ी भी रखी हुई है। वहां पर एक अलहदा सेल बना हुआ है, वो क्या करते हैं कि वहां के जो साइंसदान है हर वक्त वो रेडियो पर बता रहे होते हैं कि इस वक्त स्पेस में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द स्पेस, वो उसकी कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, जैसे गेम होती है ना तो कमेंट्री कर रहा होता है बंदा। वहां के लोग हर चंद मिनट के बाद बताते हैं इस वक्त स्पेस में क्या हो रहा है, मार्स में ये हो रहा है तो चांद में ये हो रहा है तो सूरज में ये हो रहा है तो फलां में ये हो रहा है। इस आदमी ने खुद वहां फोन मिलाया और फोन मिला के उनको कहा जी कि आप बताएं कि चांद कब नजर आएगा, हमने रोजे रखने और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। वो तो वैसे ही फोन करते ही पूछते हैं कैन आई हेल्प यू, उनसे जी बिल्कुल हम तो आपकी हेल्प चाहते हैं। अब जब मैंने उसे बताया कि ये प्रॉब्लम है मेरा, तो उन्होंने कंप्यूटर से देख के बताया कि इस वक्त ईस्टर्न साइड से, यानी कि न्यूयॉर्क साइड जो है, कैलिफोर्निया वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड पे फला 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 शहर में चांद नजर आने के चांसेस निस्बतन रिलेटिवली ज्यादा है। हमने कहा जी नहीं, आप हमें ये बताएं कि यकीनी तौर पर आप बता सकते हैं कि कहाँ नजर आएगा, कहें यकीन से नहीं बता सकते। हमने कहा क्यों, कहने लगे जी अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल चाहिए ना, हमारे पास तो है इतनी, तो आप नेवल ऑब्जर्वेटरी से रिव्यू करें। अच्छा नेवी वालों को चांद की हर वक्त लोकेशन की जरूरत होती है, क्यों कि जब हाई टाइड होती है ना 13-14 होते हैं ना चांद की, 14-13-14-15, तो उस वक्त अल्लाह ताला की शान के मैग्नेटिक फोर्सेस का ऐसा ताल्लुक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, समुद्र की जो टाइड है ना वो बहुत हाई होती है, हाईएस्ट टाइड होती है 1500, फिर चांद घटता जाता है तो समुद्र भी काम डाउन होता जाता है, जब बिल्कुल उनका न्यू मून होता है तो समुद्र में बिल्कुल, तो चूंकि समुद्र में उन्होंने सफर करना होता है, जहाज जाने होते हैं, तो उनको फिर ख्याल रखना पड़ता है कि कब हाई टाइड है कब नहीं है। तो वो क्लेम करते हैं कि वी ट्रेस ईच इंच ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मून, वी ट्रेस ईच इंच ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मून, हम चांद का जो मदार है उसके हर हर इंच को हम ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। उसने मुझे नंबर दे दिया। उसने कहा फिर आप वहां से पूछे। हमने कहा बहुत अच्छा, हम तो जरूरतमंद थे, मैंने खुद वहां फोन मिलाया। मैंने कहा जी कि आज मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि चांद कहाँ पर यकीनी तौर पे नजर आएगा। उसने कहा जी बात यह है कि मैं आपसे ना सेंट्रल कंप्यूटर में मिला रहा, आप उनसे पूछ लें। सेंट्रल कंप्यूटर में कोई लेडी थी, उसने रिसीव किया, वो भी कहने लगी कैन आई हेल्प यू। मैंने उसे बताया भी मेरी ये प्रॉब्लम है, आप हेल्प करें। उसने कहा मैं आपको देख के बताती हूँ। उसने कंप्यूटर पे देख के बताया फला 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 जगह चांद से कितने परसेंट हैं उम्मीद है नजर आएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं उम्मीद वाली बात चाहिए, मुझे गारंटी वाली बात चाहिए कि आप मुझे ये कहें कि गारंटीड फला जगह नजर आएगा, पक्की बात है। उन्होंने कहा कि हम गारंटी नहीं कर सकते। तो क्यों गारंटी नहीं कर सकते? इसलिए कि हम लोग तो चांद पे कदम रख चुके, हम लोग तो चांद पे कदम रख चुके, तो क्या अब चांद नजर ही नहीं आता? जब मैंने ये बात कही तो वो कहने लगी कि आप कुछ साइंस समझते समझ सकेंगे? मैंने कहा हमें कुछ थोड़ी बहुत समझ जरूर लूंगा। तो उसने कहा कि देखें, हम लोग जो चांद को देखते हैं ना कि ये इस वक्त कहाँ जगह है, ये जो डिसीजन लेते हैं, ये आंख से देख के, दूरबीन से देख के, टेलीस्कोप से देख के नहीं होता, समझे? ना आंख से देख के डिसीजन होता है, ना ये टेलीस्कोप से देख के डिसीजन होता है। तो भाई कैसे होता है? उसने कहा जी एक मैथमेटिकल सेट ऑफ इक्वेशन हमने डेवलप कर लिया है, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हमने कर लिया है, इसको कहते हैं डिजिटल सिमुलेटर। वो हमने एक डेवलप किया है। हम उन इक्वेशन में जब डालते हैं कि इस वक्त चांद का होगा, तो कैलकुलेट करके वो बता देता है कि चांद किस जगह होगा। हम कैलकुलेशन से मालूम करते हैं, देख के नहीं मालूम करते। फिर कहने लगी कि कैलकुलेशन जो है ना, उसमें इक्वेशन जो है बहुत सारी, इतनी ज्यादा कि हजारों की तादाद में इक्वेशन है जो मॉडल है, और उस मॉडल के अंदर 6000 वेरिएबल्स हैं। 6000 वेरिएबल्स हैं, और उन 6000 वेरिएबल में से एक वेरिएबल के बदलने से एंड रिजल्ट बदल सकता है। अब कौन गारंटी करे कि 6000 वेरिएबल बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी? नो वन कैन गारंटी। तो जब हम वो नहीं गारंटी कर सकते कि वेरी करेंगे या नहीं, तो हम एंड रिजल्ट कैसे गारंटी कर सकते हैं? तो ये मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका और सरदार ने 1400 साल पहले कह दिया कि तुम्हें इन साइंटिफिक चीजों पर डिसीजन लेने की जरूरत कभी नहीं पड़नी, तुम ले रहो या तो ही ले रहे हो, तुम चांद को देखना आंख से तो तुम नमाज जो है ना रोजे शुरू कर देना, और फिर चांद को देखना तो तुम इधर उधर पड़ देना। फिर उसने मुझे बात और समझाई। उसने कहा जी देखो, जो चांद का ऑर्बिट है ना, वो धागे की तरह नहीं है कि ये धागा है और चांद ये चल रहा है, या एक लोहे की सलाख है उसका रिंग बना हुआ है, चांद उस पर चल रहा है। उसने कहा नहीं। उसने कहा इसकी मिसाल है कि जैसे एक 500-600 कारें इकट्ठी चलने का एक मोटरवे होता है, जिस पर 500 कारें इकट्ठी चल सकती हैं, इतना खुला मोटरवे है, और उस मोटरवे के ऊपर एक कार चल रही है, और वो कभी यूं भी हो जाती है, कभी यूं भी हो जाती है, मगर चल वही रही है, उसी के ऊपर रहेगी मोटरवे पर, लेकिन कभी इस किनारे पे भी आ सकती है और कभी उस किनारे पे, कभी दरमियान में भी हो सकती है। तो चांद का मदार भी इसी तरह कितने किलोमीटर वाइड है, और उसके अंदर वो ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी जरा समझे कि जिस तरह जमीन में जलजले आते हैं इस तरह चांद में भी अर्थक्वेक्स आते हैं, वो मून क्वेक्स बन जाए, वो आते हैं। मुमकिन है कि हम कहें कि कंप्यूटर कहते हैं कि आज चांद नजर नहीं आएगा, ये उपक से कुछ किलोमीटर नीचे, मगर एन उस वक्त इसमें अल्लाह ताला के हुक्म से कोई मून को एक आ जाए तो ये जो हिलेगा तो थोड़ी देर के लिए ऊपर नजर आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए ऊपर नजर आ जाएगा और हमारा आइडिया गलत हो जाएगा। या नजर आना था, अर्थ को एक दूसरी सुमत में आ गया और इसमें नजर आने की वजह ये नीचे रह गया तो नजर आ ही नहीं सकता। यानी उसने डिसीजन ये दिया कि आप कभी भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि चांद यकीनन नजर आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं, मसलन 8 घंटे वक्त तो गुजरे नहीं नजर आएगा, पक्की बात। 20 घंटे हो गए पक्का नजर आएगा, ठीक बात। लेकिन दरमियान में अगर है तो उस वक्त आप नहीं डिसीजन दे सकते। तो मालूम हुआ कि जब एक चीज से हमेशा गारंटी से डिसीजन कर ही नहीं सकते, वो क्राइटेरिया बन ही नहीं सकती। तो क्राइटेरिया क्या बना फिर आकर, ये नबी इस्लाम ने फरमाया था सोमो निरोया के ही वह अक्षर निरोया के ही, तुम चांद देखना तो रोजे रखना और चांद देखना तो इफ्तार कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल गुजरने के बाद भी वही उसूल चल रहा है। एक बात और ध्यान में रखें, एक होता है रियल टाइम और एक होता है रिलेटिव टाइम, समझे। एक होता है रियल टाइम और एक होता है रिलेटिव टाइम। रियल टाइम और रिलेटिव टाइम का तस्वुर दुनिया में सबसे पहले दीन इस्लाम ने पेश किया। बात बड़ी अहम है, बड़ा अहम नुकता है। रिलेटिव टाइम का तस्वुर सबसे पहले किसने पेश किया? दीन इस्लाम ने। जब साइंस की बुनियाद ही नहीं थी, जब अभी पहिया ही याद नहीं हुआ था, जब डायनमो ही नहीं बना था, जब पेपर ही नहीं याद हुआ था, उस वक्त 1400 साल पहले आज से दीन इस्लाम ने रिलेटिव टाइम का तो सब हो गया। रिलेटिव टाइम क्या होता है भाई? एक साइंसदान गुजरा है, आइंस्टाइन उसका नाम है, उसने एक थ्योरी पेश की जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने एक इक्वेशन दी जिसको कहते हैं टाइम डायलेशन। तो उसने तस्वीर लिया जी कि टाइम डायलेट कर जाता है। उसने कहा ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मुमकिन है इसमें एक जो है ना दिन गुजरे और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साल गुजर चुका हो, तो ये रिलेटिव टाइम होगा एक दूसरे का। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले कहा कान यौमन इंदहु मिकदार 50,000 सना। क्यामत का दिन वो दिन होगा कि उसका एक दिन क्यामत का दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। अब ये रिलेटिव टाइम का तस्वीर ले, क्यामत का एक दिन बना और यहां से कितने दिन बने? 50,000। 1400 साल पहले तो कोई तस्वीर नहीं कर सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो देखो दीन इस्लाम ने रिलेटिव टाइम बता दिया, हाँ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 50,000 साल गुजर जाएंगे जबकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक दिन गुजरेगा। अच्छा पहले ना लोग जो साइंस पढ़ते थे वो इससे बड़ा खराब करते थे दीन इस्लाम की इन बातों को ना, वो कहते थे कि ये गप्पे वाली है, कहते थे कच्ची बातें चल रही हैं,
ये कैसे हो सकता है? इधर 50,000 साल वहां कहे कि नहीं, वो मानते नहीं। लेकिन जब आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन की इक्वेशन दी तो उनको ये बात माननी पड़ गई। आज दुनिया का कोई साइंसदान ऐसा नहीं कि टाइम डायलेशन का इनकार कर सके। इनकार कोई कर ही नहीं सकता, ऐसी पक्की बात है। अच्छा, उस टाइम डायलेशन की इक्वेशन में ना दो चीजें होती हैं, एक होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी रोशनी जिस रफ्तार से चलती है, 1 सेकंड में 186,000 मील/सेकंड। तो एक है लाइट की स्पीड और एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपनी स्पीड। तो उस इक्वेशन का मुद्दे जवाब यह है, जरा तवज्जो करवाना, समझना आसान होगा कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड रोशनी की स्पीड से कम है, मुस्तकबिल आ रहा है, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, आगे चल रहा है, जैसे अब रोशनी की स्पीड ज्यादा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्लो, तो मुस्तकबिल आ रहा है। और वो कहते हैं कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो फिर टाइम एक जगह रुक जाता, वही टाइम रहेगा, हमेशा हाल रहेगा, मुस्तकबिल आ ही नहीं सकता, टाइम एक जगह बंद गया, रुक गया टाइम। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बढ़ जाए तो माजी आना शुरू हो जाएगा, जो जिंदगी गुजर चुकी है ना वो टाइम आना चाहिए। ये उस इक्वेशन से ये बात साबित हो। पहले लोग कहते थे कि ये जो मुसलमान कहते हैं कि जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, कहते थे कैसे हो सकता है, फिर भी वहां जन्नत में हमेशा असर का वक्त होगा, कहते हैं ना जी, न गर्मियों की दोपहर होगी न सर्दियों की रात होगी, जन्नत में एक वक्त होगा जैसे असर का ठंडा वक्त होता है ना जी, मजे का, हमेशा वही वक्त रहेगा। लोग कहते थे देखो ये कैसे गप्पे मारते हैं कि एक ही वक्त रहेगा, वक्त बदलता है। फिर जब हमने उनको कहा कि देखो भाई नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेराज नसीब फरमाया, तो मेराज पर जब नबी अलैहिस्सलाम ऊपर तशरीफ ले गए, हदीस पाक में आता है जब आप लौट के वापस आए तो बिस्तर गर्म था, पानी वजू का बह रहा था, यानी जैसे छोड़ के गए थे हर चीज वैसी की वैसी, और आप इतना सफर करके भी आ गए तो काफी रस्ते भी हफ्ते थे। वो कहते थे देखो इतनी देर में मक्का से पहुंचे मदीना, मदीना से पहुंचे मस्जिद अक्सा, वहां इमामत करवाई, फिर ऊपर चढ़े, फिर जन्नत की सैर की, फिर जहन्नम की सैर की, फिर अर्श की सैर की, लाहो कलम की सैर की, सारी सैरें करके जब वापस आए तो जो टाइम वही खड़ा था, लगाम डाल के चले गए, मजाक उड़ा थे। गहरिया जहन के लोग इस बात का मजाक उड़ाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये पत्ता भी साफ हो गया। जब टाइम ड्यूरेशन इक्वेशन आई तो उस इक्वेशन से साबित होता है कि टाइम एक जगह रुक सकता है अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। अब साइंस ने तस्लीम कर लिया, आज दुनिया का कोई साइंसदान नहीं सोच सकता। इसमें मैं आपको दो मजे की बातें जरा बताता चलूं, आप अब फंस तो गए हैं, जब तक खत्म नहीं करूंगा उस वक्त तक बैठना पड़ेगा। देखें दो मजे की बातें ये हैं, हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को जब मेराज की रात ले जाने लगे तो आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लेकर आए। तो जो लफ्ज है ना सवारी का, वो क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? बुर्राक। बुर्राक बर्क से निकला, बर्क बिजली को कहते हैं, बिजली की तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी। चुनाचे बुर्राक मक्का मुकर्मा से लेके चला तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मदीना में उतर के बेरेली से आगे जो वादी है वहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा करना, फिर वहां से बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां अंबिया के। लेकिन اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر عروج ہوا اوپر. اس وقت براق ساتھ نہیں تھا. اس وقت کیا چیز ساتھ نہیں تھی؟ براق نہیں تھا. ایک اور سواری لائی گئی اور اس سواری کا نام حدیث پاک میں رف رف آتا ہے کہ رف رف سواری لائی گئی. رف رف کہتے ہیں ایلیویٹر کی طرح کی کوئی سواری. آج دیکھیں نا 100 منزلہ بلڈنگ ہو تو آپ ایلیویٹر پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ کے اندر آپ کو 100ویں منزل پہ اتار دیتی ہے. تو براق جس نے ہوریزنٹل سفر کیا وہ علیحدہ سواری تھی, جس نے ورٹیکل سفر کیا حدیث میں اس کے لیے الگ الگ رف رف کا ہے. اللہ 1400 سال پہلے کیا ضرورت تھی؟ وہی براق آسمان کے اچھے لے کے چلا جاتا. نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے رف رف سواری لائی گئی, نبی صاحب اس پہ سوار ہوئے اور وہ سواری شروع کرتے, اس پہ ایلیویٹر نما سواری کے اوپر لے کے چلے گئے. اچھا یہ بات تو چلو آگے سمجھ. پھر وہاں پر کتنا وقت لگا اللہ جانے, مگر جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وقت گزرا ہی نہیں. وہ پانی بھی بہہ رہا تھا, وہ بستر بھی گرم تھا, وہ فلاں. لیکن آج آئنسٹائن کی ایکویشن نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ فریم آف ریفرنس کی ویلوسٹی ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو وقت تھم جاتا ہے, وقت رک جاتا ہے. دوسری مزے کی بات یہ سنیں, ہمارے یہاں دیہاتی ماحول ہوتا ہے تو دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا کاشتکار, صبح اذانوں کے وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس وقت زمینوں میں نا اپنے بیل نکال کے ہل لگا کے وہ ہل چلاتے ہیں صبح صبح ٹھنڈے وقت میں. 4-5 گھنٹے ہل چلانے میں لگاتے ہیں وہ. چنانچہ جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے نا, اس وقت تک وہ محنت کر 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 کے تھک چکے ہوتے ہیں, پسینے آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کو لسی پینے کی طلب ہوتی ہے, ناشتے کی طلب ہوتی ہے, اور اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ناشتہ لے کے کوئی ہمارے پاس آئے. ہوتا کیا ہے کہ ان کی بیویاں وہ بھی اذانوں کے وقت اٹھتی ہیں, وہ پہلے تو لسی بناتی ہیں, پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا پڑھ لی, پھر بچوں کا ہوا, پھر انہوں نے کھانا بنایا, پھر بچوں کو کھلایا, بچوں کو انہوں نے سکول بھیج دیا. اشراق کے وقت جب وہ فارغ ہو جاتی ہیں نا تو وہ سوچتی ہیں کہ ہمارا میاں تھک گیا ہوگا, اس کو اب ناشتہ وہاں پہنچانا ہے. تو وہ میاں کا ناشتہ بنا کے نا اس کو اپنے سر پہ رکھا اور ایک مٹکے کے اندر انہوں نے لسی ڈالی اور وہ چل پڑی کہ میاں کو وہاں جا کر کھیت میں ناشتہ کروا. ادھر میاں صاحب پیاس کی شدت کی وجہ سے انتظار میں کہ کب ہمارا ناشتہ پہنچے گا. تو جیسے ہی وہ دور سے دیکھتے ہیں نا جی کہ بیوی آ گئی ناشتہ لے کے, تو جہاں حل ہوتا ہے نا اس کو وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آ کے نا ناشتہ پہلے کرتے ہیں اور حل بعد میں کرتے ہیں. اب شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا شاعرانہ انداز میں نا رنگ بھر دیتے ہیں, ذرا سین سین کیا. چنانچہ ایک شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا, تیا لونگ با لشکارا تے حالیاں میں حل روک لے. لونگ کہتے ہیں جو عورتیں اپنے ناک کے اندر وہ ایک کوکا ڈالتی ہیں کرسٹل, وہ چمکتا ہے دور سے, دھوپ ہو یا کوئی دور سے چمکتا ہے, اس کو اردو میں لونگ کہتے ہیں, پنجابی میں کوکا کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا کہ بھائی جب اس کوکے کا لشکارا پڑا نا تو حل چلانے والے نے حل کو وہیں پر روک لیا اور بیٹھ کے ناشتہ کیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب محبوب کل جہاں جب معراج کے لیے تشریف لے گئے, تیا لونگ دا لشکارا تے حالیہ نے حل روک لے, حل چلانے والے نے حل روک لیے, کائنات کا نظام چلانے والے نے پھر کائنات کے نظام کو روک لیا. اب میری محبوب سے ملاقات ہوگی, جب واپس جائیں گے پھر گاڑی آ گئی. اب اس بات کو سمجھنا آسان. 14 سال پہلے سمجھنا مشکل تھا. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسی رحمت ہے. یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ریلیٹو ٹائم کا تصور اسلام نے پیش کیا. دو مثالیں تو آگے دی. ہمارا یہ ٹائم کے اوپر جو مضمون ہے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اب ہم اگلی محفل میں کسی مضمون کو گزشتہ سے پیوستہ ادھر سے آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے.